ओम शांति। ग्यारहवीं कला, गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला, द आर्ट ऑफ कंसीलिंग एंड रिवीलिंग। परमात्मा की महिमा करते हुए लोग कहते हैं कि अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, अतः यह भी एक बहुत बड़ी कला है कि बहुत महान कार्य करते हुए भी मनुष्य स्वयं को गुप्त एवं साधारण वेशभूषा में रखे और अपनी ख्याति, यश या प्रशंसा को मन से स्वीकार न करे, बल्कि स्वयं को छिपा कर रखे। बहुत से मनुष्य कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसके बदले में नाम कमाना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं अथवा उच्च स्थान पाना चाहते हैं। आज कोई कुर्सी का इच्छुक है, कोई गुरु गद्दी का, कोई मान का, कोई प्रतिष्ठा का। परंतु हमने प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन में यह देखा कि वे स्वयं को कैसे छिपाते रहे। या तो वे लोगों को कहते, ये बच्चियाँ ब्रह्मा कुमारियाँ मुझसे ज़्यादा प्रवीण हैं, या वे कहते, हम तो पतित थे, यह सब शिव बाबा की कमाल है। कभी वे कहते, मैं तो गांव का रहने वाला था, मुझे शिव बाबा ने बादशाही दे दी। फिर कहते, शिव बाबा न आते तो हम जानते ही क्या थे, हम तो दुर्गति को प्राप्त थे। फिर कहते, शिव बाबा माताओं को ज्ञान अमृत का कलश देने के लिए आए हैं। परंतु चूंकि वह मेरे मुख से बोलते हैं, अतः मेरे कान निकट होने कारण मैं भी सुन लेता हूँ। गोया इन माताओं के निमित्त कारण से मेरा भी कल्याण हो जाता है। कभी वे कहते कि मातेश्वरी जी मुझसे भी आगे हैं, क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारिणी हैं, जबकि मैं सीढ़ी उतरा हूँ। इस प्रकार सदा दूसरों को अपने से आगे बताना, अपने को छुपाना, इस कला का प्रयोग कर वे न केवल दूसरों को आगे बढ़ाते, उनमें उल्लास पैदा करते, बल्कि उन्हें नम्रता का तथा यश को अस्वीकार कर गुप्त रहने का पाठ पढ़ाते रहे। वे सदा यही कहते कि गुप्त दान से महापुण्य होता है, गुप्त सेवा से अधिक बल मिलता है और गुप्त पुरुषार्थी ही आगे बढ़ जाता है। वे कहते, शिव बाबा गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त है, इसलिए हमें भी गुप्त ही रहना है, अर्थात अपनी प्रत्यक्षता नहीं करनी है, बल्कि शिव बाबा का नाम लोगों के सामने लाना है, सभी को यही कहना कि शिव भगवान उवाच, अर्थात शिव बाबा ने ऐसा कहा है, हम तो सेवक सर्वेंट हैं अथवा विद्यार्थी हैं। इस प्रकार स्वयं को गुप्त रखना और शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना ही गोया अपनी भी प्रत्यक्षता करना है, क्योंकि बच्चा जब गुणवान बनकर बाप को ही अपने सारे गुणों का श्रेय देकर उसकी प्रत्यक्षता करता है, तो बाप फिर उस बच्चे के शील की महिमा करके उसकी प्रत्यक्षता करता है। सन शोस फादर एंड फादर शोस सन। बाबा यह भी बताते हैं कि यश की कामना करने अथवा नामाचार स्वीकार करने से पुण्य क्षीण होते हैं और योग रूपी कमाई में घाटा पड़ता है। जो योग का अभ्यास करता है उसे चाहिए कि न अपनी महिमा स्वयं करे, न ही दूसरों से अपनी महिमा स्वीकार करे, अर्थात उसे चाहिए यदि अन्य कई लोग उसकी महिमा करें तो वह उसे सुनकर अभिमानी न बने, खुशी से इतराने न लगे और उस महिमा को अपने लिए न मानकर उन्हें यह कहे कि यह तो सब शिव बाबा का कमाल है, कराने वाला तथा सामर्थ्य देने वाला वही है। तो देखिए, कार्य करते हुए अपने जीवन में अधिकाधिक गुण भरते हुए भी स्वयं को गुप्त रखना, यह एक कला ही तो है। इस कला से रहित मनुष्य का न तो मन मानता है कि वह कार्य भी करे और लोग उसके गुण न गाएं, उसकी प्रशंसा न करें या उसका श्रेय उसे न दे, न ही वह युक्ति युक्त अथवा ज्ञान संगत रीति से स्वयं को गुप्त करना जानता ही है। इस कलाहीनता का परिणाम यह होता है कि वह अपने किए हुए अच्छे कार्य का क्षणिक फल यश के रूप में भोग कर खाली हो जाता है और उस प्रशंसा को स्वीकार करके अभिमान का रोग मुंह मांग कर लेता है तथा उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि जहाँ जाता है वहाँ उसकी यह कामना होती है कि लोग मेरा मान करें, मुझे भी समझदार और अच्छा कार्यकर्ता माने, मुझे आदर दें, मेरा आतिथ्य करें अथवा मेरे विचार पूछें। इस प्रकार वह नम्रता रूपी अनमोल रत्न को गंवाकर कंगाल हो जाता है। लोगों द्वारा मान रूपी टुकड़े के लिए सदा मोहताज रहता है और उनसे मनचाहा आदर न मिलने पर उनसे रुष्ट, असंतुष्ट या खिन्न होकर दुखी होता है। तो स्पष्ट है कि जीवन को नम्रता, स्नेह, सहयोग आदि दिव्य गुणों से युक्त बनाए रखने के लिए तथा आंतरिक रीति से सदा प्रसन्न, अपनी मस्ती में मस्त रहने के लिए स्वयं को गुप्त रखना भी एक बहुत बड़ी एवं उपयोगी कला है। प्रत्यक्ष करना, जैसे स्वयं को गुप्त रखना एक महान कला है, वैसे ही प्रत्यक्ष करना भी एक कला है। पब्लिसिटी भी एक कला है। बहुत से लोग अपनी या अन्य किसी की पब्लिसिटी करना जानते हैं, परंतु उसके साथ ही साथ वे गुप्त नहीं रहते, अतः उसे दिव्यता के दृष्टिकोण से कोई कला नहीं कहेंगे। कला तो इसमें है कि दोनों बातें साथ साथ सिद्ध हों, हम गुप्त भी रहें और प्रत्यक्ष भी हों। यह कैसे हो सकता है? कोई मनुष्य कह सकता है कि ये दोनों काम एक साथ करने की कामना करना तो गोया ऐसी कामना करना है कि हम आटा भी गूंदें और हिले भी नहीं, परंतु बात वास्तव में ऐसी नहीं है। आपने देखा होगा कि नट रस्सी पर चढ़कर कर्तव्य भी करता है और संतुलन भी रखता है। ऐसे ही ये दोनों कार्य भी एक साथ हो सकते हैं। कैसे? वास्तव में स्वयं नम्र रहना, स्वयं को गुप्त रखना ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष करना है। योगा अभ्यासी एवं ज्ञानवान मनुष्य का लक्ष्य तो यही रहता है कि वह परम पिता ही की महिमा करे तथा कराए। इस उद्देश्य से वह अपना अनुभव व्यक्त करते हुए दिल की गहराइयों से कहता है कि मैं पहले पतित था, विकारों के गर्त में था, दुखी था, घोर अंधकार कूप में था, प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मुझे बनाया है। इस प्रकार प्रभु की प्रत्यक्षता करने से उसकी अपनी प्रत्यक्षता साथ साथ होती जाती है, क्योंकि उससे यह मालूम हो जाता है कि अब उसका जीवन कैसा उच्च बना है, तथापि इसका उद्देश्य यह नहीं होता कि वह अपनी प्रत्यक्षता करे। उसका लक्ष्य तो गुप्त प्रभु के सर्वोत्तम एवं कल्याणकारी कर्तव्यों को ही लोगों के ध्यान में लाकर उन्हें विपरीत बुद्धि से बदलकर प्रीत बुद्धि बनाना होता है। परंतु ऐसा करने के लिए वह मन वचन कर्म से सच्चा पवित्र सेवा में सदा तत्पर एवं मधुरभाषी होकर व्यवहार करता है, तभी वह प्रत्यक्षता कर सकता है। इससे सिद्ध है कि यह भी एक बड़ी आर्ट है, एक बड़ी कला है। इस कला को धारण करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? उपर्युक्त बातों से यह तो संकेत मिल ही जाता है कि इस कला में निपुण बनने के लिए हमें मुख्य रूप से गुण चाहिए। पहला, स्नेह युक्त संबंध एवं व्यवहार का कौशल्य, गुड पब्लिक रिलेशंस। दूसरा, जिसको प्रत्यक्ष करना है उसकी अर्थात परमात्मा की गहराइयों से अनुभव युक्त महिमा तथा गुणगान। तीसरा, तन मन धन सभी साधनों से लग्न और धुन से इस ओर पुरुषार्थ। चौथा, वर्तमान सार्वजनिक प्रचार एवं प्रसार साधनों का अलौकिक एवं दिव्यता युक्त रीति से प्रयोग। पांचवा, अपने स्वभाव में नम्रता तथा सत्यता। छठा, गलत एवं अपवित्र साधनों का त्याग। सातवा, अटूट प्रभु निश्चय तथा उस एक के बल और भरोसे पर स्थिर। यदि हम इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण कर इनका प्रयोग करेंगे तो हम इस कला में निपुण होंगे और ईश्वरीय सेवा के कार्य में लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से परिचित कराने में भी सफल सिद्ध होंगे। ओम शांति।